ओम शांति। पिछले दो पार्टों में हमने साक्षी की खोज के संदर्भ में बहुत सी बातों की चर्चा की। आज हम इसके कंक्लूजन की ओर बढ़ रहे हैं और बहुत सारे इसके संबंध में प्रश्न भी हैं। साक्षी अकेला ऐसा केंद्र है जो मन की समस्त क्रियाओं के पार है। हमने अभी तक जाना कि समस्त क्रियाएं मन के अधीन है इस सृष्टि में, इसलिए समस्त परिस्थिति समस्त समस्याएं मन के अधीन है। और यदि इन समस्याओं से आप पार जाना चाहते हैं तो मन के पार जाना पड़ेगा, और मन के पार मन के द्वारा तो नहीं जा सकते, तो इसका केंद्र साक्षी है। यानी साक्षी के केंद्र से आप मन की समस्त क्रियाओं के पार जा सकते हैं, यानी समस्याओं के पार जा सकते हैं। तो साक्षी पर बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कि बच्चे, जो साक्षी है वही साथी है, और साथी बन साक्षी के केंद्र पर बैठ करके ड्रामा के हर एक दृश्य को देखो तो सभी हलचलों से पार हो जाएंगे, कोई हलचल नहीं होगी। का अर्थ है यह स्थिति न्यारी और प्यारी है। और बाबा कहते हैं न्यारी है प्यारी है का अर्थ है निर्लिप्त है। निर्लिप्त है, आत्मा तो निर्लिप्त नहीं है, लेकिन बाबा ने एक दूसरी बात साथ साथ कही कि आत्मा तो निर्लिप्त नहीं है लेकिन देही अभिमानी स्थिति निर्लिप्त अवस्था है। का अर्थ है कि साक्षी की स्थिति है वो निर्लिप्त अवस्था है। बहुत समय तक हमको ये संकल्प चलता था कि शास्त्रों में कहते थे कि आत्मा निर्लिप्त है, और हमें अनुभव होता था कि जब हम उस स्थिति में चले जाते हैं तो हमें न कोई विकार न कोई बुराई कुछ भी आकर्षित नहीं करती, और ऐसे लगता कि हम समस्त कर्मों के पार चले गए। भट्टी के प्रोग्राम चलते थे तो तीन तीन दिन सात सात दिन भट्टी के प्रोग्राम मधुबन में शुरू की बात है चलते थे, तो वहाँ से निकल के आने के बाद लोग बिंदु रूप बीज रूप अवस्था के अनुभव में मस्त रहते थे। तो क्या होता था कि अचानक उस स्थिति में से जब हम नीचे आते थे कार्य व्यवहार के लिए, भोजन करने जा रहे हैं, और उस समय अचानक किसी कारणवश कोई ना कोई व्यक्ति बहुत बुरा व्यवहार करता, और अंदर हमको लगता कि यह क्या कर रहा है, हमें कोई भी फर्क उस बात का अंदर कोई भी प्रतिक्रिया होती ही नहीं। ऐसा नहीं कि हम पुरुषार्थ करें कि प्रतिक्रिया करें या नहीं करें, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे लगता था कहीं ना कहीं मैं तो मुक्त हूं, निर्लिप्त हूं। और बाबा ने इस राज को कहा कि सिद्धांत और दर्शन तो ये है सभी आत्माओं के लिए कि हम कर्मों के हिसाब किताब में आते हैं, इसलिए लिपायमान चेतना हमारी हो जाती है। यानी जब हम क्रियाशील हैं, चेतना जब क्रियाशील है तब क्रियाशील चेतना है, सामान्य रूप से कार्य कर रही है, और जब वह अव्यक्त चेतना कहलाती है तब सभी कर्मों से मुक्त स्थिति में रहती है। और अभी वर्तमान में हम जब कर्म के प्रभाव में आते हैं तो करीब करीब लिपायमान चेतना की स्थिति हो जाती है, मतलब लिपापोती हो जाता है सब कुछ। तो केंद्र साक्षी का सदा सब चीजों से अलग है। तब प्रश्न उठता है कि हम अभी और यही मुक्त हैं, हम अभी और यही कर्मातीत हैं, हम अभी और यही किसी भी कर्मों के हिसाब किताब के बंधन से मुक्त हैं। का अर्थ है कि हमारे पास कोई भी पिछला चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बाबा कहते कि शरीर छूट जाए और खुशी न जाए, यह किस बात को दिखाता है? और खुशी गुम होती है हमारे कर्मों के हिसाब किताब और हजार बातों से खुशी गुम होती है, लेकिन बाबा तो यहां कहते खुशी गुम ही नहीं होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि खुशी हमारा निर्णय है, खुशी हमारी स्थिति है, खुशी किसी कर्मों का फल नहीं है। तो साक्षी के केंद्र से आप निर्लिप्त अवस्था की ओर रह सकते हैं, यह बहुत बड़ी बात है साक्षी चेतना की। इसीलिए इसके क्रम में हम और भी आगे बढ़ते हैं और इस तथ्य को देखते हैं कि क्या यह स्थिति सहज हो सकती है साक्षी की अवस्था। जबकि साक्षी की स्थिति सहज है, बाबा तो कहते हैं कि बच्चे बीज रूप अवस्था में, बिंदु रूप स्थिति में स्थित होकर के बीज रूप बाप से लगन लगाओ, ती लगन की अगन में सब कुछ सहज भस्म हो जाएगा। फिर ये एक एक विकारों के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा कि अभी चूहा आया, चूहा को हटाया तो बिल्ली आई, बिल्ली को हटाया तो कुत्ता आया, कुत्ता को हटाया तो संस्कारों का शेर आ गया। फिर प्रश्न उठता है कि जब इतना सहज है तो बाबा फिर पुरुषार्थ की बात क्यों कर रहे हैं? तीव्र पुरुषार्थ करो, हड्डी हड्डी पुरुषार्थ करो, बीसों नाखून का जोर लगाओ। एक तरफ सब कुछ सहज है फिर पुरुषार्थ नहीं, दूसरी तरफ पुरुषार्थ यदि करना है तो कुछ सहज नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ मुश्किल जरूर है। वो मुश्किल क्या है? कभी इस पर विचार तो किया होगा कि सब कुछ सहज है। बाबा तो कहते कि मेहनत नहीं करो, बच्चों की मेहनत बाप से देखी नहीं जाती, बच्चे पत्थर तोड़ रहे होते हैं तो बाबा को पसंद नहीं है। लेकिन मेहनत पसंद नहीं है तो पुरुषार्थ किस चीज का? फिर इस बात पर हमारा विचार चला कि पुरुषार्थ में तीव्रता क्या है फिर हमारी। अभी हम लर्निंग की बात सीख रहे थे, ये एक पुरुषार्थ है सवेरे से शाम तक, और इसी लर्निंग के संदर्भ में हम एक और लर्निंग की तरफ इशारा कर रहे हैं। असजगता के प्रति सजग होना, सामान्यतया ये जो पुरुषार्थ है, जो कठिनाई है, बहुत बड़ी कठिनाई है। और ये बहुत बड़ी कठिनाई क्या है? असजगता के प्रति सजग होना। हम सजग हैं, हम जागरूक हैं, हम किसी भी कार्य के लिए ध्यानपूर्वक रह सकते हैं, किसी कार्य के प्रति जागरूक हो सकते हैं। यह जागरूकता अलग चीज है। किसी बाहर के जगत में, किसी कार्य के जगत में जब हम कुछ पत्र लिख रहे हैं तब बहुत जागृत होकर के हम लिखते हैं, तो जागरूकता वहां अंदर के जगत में भी रहती है शब्दों और स्मृतियों के संबंध में। यह जागरूकता अलग चीज है। यह जागरूकता, इस जागरूकता का प्रयोग तो हम सभी करते हैं, हम कहते हैं आत्म जागरूकता की स्थिति। लेकिन असजगता के प्रति जागना, यह अत्यंत डिफिकल्ट कार्य है। इसको आप ऐसे समझे कि आपने लक्ष्य रखा कि मैं एक घंटा योग करूंगा और एक घंटा मैं चार्ट लिखूंगा, इस स्थिति में मैं रहूंगा। आपने प्रारंभ किया और एक घंटे के बाद सब कुछ भूला हुआ है, एक घंटे के बाद याद। ये जो एक घंटा असजगता की स्थिति थी, इस पर ध्यान हमारा बिल्कुल नहीं जाता है, जाता है यदि जाए तो तत्क्षण लौट आए चीजें। एक घंटा तक यह जो असजगता है, यह एक धुंध है जिसकी तरफ हमारा कुछ भी ध्यान नहीं जाता है, और इसी के कारण बार बार हमें असफलता मिलती है और असफलता से थक करके हम उस काम को छोड़ देते हैं। इसको हम एक कहानी से समझें थोड़ा सा कि ये असजगता क्या है। सुना होगा शायद हम सभी ने थोड़ा बहुत, फिर भी हम इसको इस संदर्भ में देखते हैं। पुराने समय में क्या होता था कि अलग अलग साधना पद्धति के लिए अलग अलग स्कूल हुआ करते थे। कुछ स्कूल होते थे संकल्प की शक्ति को बढ़ाने के लिए, और इसी का उदाहरण है कि एक व्यक्ति टांग पर खड़ा है और एक ही टांग पर खड़ा है और एक ही टांग पर सवेरे से शाम तक खड़ा है। निश्चित रूप से हम जानते हैं कि कुछ दिन के बाद पैर खराब हो जाएगा और बहुत सारी बातें होगी, लेकिन साधना संकल्प की थी, और यदि वो व्यक्ति उस संकल्प की साधना में सफल हो जाता था तो उसके लिए और सब पुरुषार्थ सहज है। जिस काम को करने के लिए हमें एक साल लगेगा, उस काम को करने के लिए उसे एक मिनट ही लगेगा, क्योंकि संकल्प में दृढ़ता है, अब वो कहीं भी फ्लक्चुएट नहीं करता। इस तरह से कुछ आश्रमों में ये साधना चलती थी, जागरूकता की साधना, सजगता की साधना चलती थी। तो एक आश्रम यही था जहाँ सजगता की साधना चल रही थी, और शिष्य आते थे और गुरु उसे सजगता के लिए पुरुषार्थ प्रारंभ करा देते थे कि भाई आज से तुम जागृत हो, सजग रहो, और किसी भी परिस्थितियों में यदि तुम बेहोश हो तो मैं डंडा लेके घूम रहा हूँ आश्रम में, क्योंकि आश्रम में बहुत सारा काम भी चलता रहता था, बहुत बड़ा आश्रम होता था, कारोबार चल रहे है, सब कुछ चल रहा है। और इस क्रम में शिष्य जागे तो रहने लगते थे, लेकिन सजगता इतनी नहीं होती थी। डंडे दिन में 2-4 बार पड़ ही जाते थे, किसी न किसी को कभी न कभी डंडे पड़ ही जाते थे, सजगता खो जाती थी, स्वाभाविक है। लेकिन धीरे धीरे होश सधने लगा, सजगता आने लगी धीरे धीरे। अब किसी को डंडा पड़ता नहीं था, डंडा पड़ने से पहले ही एक उदाहरण इसका हम अपने जीवन में सुनाते। जब 86-87 में उन दिनों की बात है कि हम साधना को इस तरह ले रहे थे बहुत ज़्यादा, तो रात को सोते थे तो सवेरे हमारे पहरे वाले भाई है, उसको हम बोलते थे कि उठा देना हमको 2 बजे या 2:30 बजे, जब भी टाइम होता उठा देना। उठाने आ जाता था, उठा देता था। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा कि वो खटिए के पास आ जाता था और ऐसे करता था, तभी हम जग जाते थे। मतलब मुझे टच नहीं करता था, मैं उसको बोलता था संजय मैं जग गया, अच्छा चला जाता। फिर स्थिति यहां तक आ गई कि वो पर्दा ऐसे करता था ना, तो मैं कहता था मैं जग गया हूं, संजय आना नहीं अंदर। डंडा मारने वाली स्थिति के आसपास की स्थिति थी, क्योंकि यह निर्णय हमारा खुद का था जागने का। तो सजगता की ये स्थिति में, इसके बाद कुछ दिन के बाद क्या हुआ, तो गुरुजी ने देखा कि अब सजगता की मात्रा को थोड़ी और बढ़ानी है, तो उसने काठ की तलवार ले आई गुरुजी, और काठ की तलवार अब थोड़ा ज़्यादा घातक है लोहे की तलवार से, थोड़ा कटकुट जाएगा थोड़ा सा लगता है। और उसमें शिष्य को फिर थोड़ी जो सजगता थी वो थोड़ी जो कम थी वो बढ़ने लगी, थोड़ी 2-4 दिन किसी को कभी कहाँ किसी को थोड़ी बहुत मार फिर भी पड़ रही थी। जब उसमें भी वो शिष्य सफल हो गए, सजग हो गए, जागरूक, इसके बाद गुरुजी लोहे की असली तलवार उठा करके ले आए, कहा अब पड़ेगी, और अब पड़ेगी तो बहुत मुश्किल मुश्किल बात है, अब तो जीवन रक्षक स्थिति सामने आ गई कि अब जीवन रक्षा का प्रश्न है। और शिष्य बहुत जागा रहने लगा, अब जीवन रक्षक प्रश्न है तो अब तो चूके तो गए, जीवन ही गया, तब चूकने की कोई मार्जिन नहीं है। यदि हमारी सजगता इस लेवल पर जाएगी, और इस लेवल पर जाना बड़ा यही दुरूह है, यही दुस्तर है, यही कठिन है, यही इसी को बाबा कहते तीव्र 200 नाखून का जोर लगाओ, यहां हम चूकते हैं, यहां बड़ी मुश्किल है। ऐसा होने लगा, शिष्य जागृत रहने लगे, और एक दिन सभी शिष्य इकट्ठा हुए और सोचा कि गुरु जी झाड़ी में बैठा है उधर अकेले ध्यान कर रहा है, और हम लोगों की इतनी पिटाई हो गई, हम लोग ये भी तो चेक करके गुरुजी भी वास्तव में जगा हुआ है कि नहीं जगा हुआ है। जैसे उसने ऐसा अपने में आपस में मशवरा की, वैसे ही झाड़ी से गुरुजी चिल्लाया, अरे अरे ये काम नहीं करना भाई, क्योंकि गुरुजी और भी सजग थे। ये जो असजगता है, इसके प्रति सजग होना, हम इसका अभ्यास करते थे। तो जब आप 1 घंटे भूले रहते, और जब आप आधे घंटे भूले रहते, और जब आपको 15 मिनट के बाद फिर स्मरण लौटने लगता, 15 मिनट भूलते नहीं कि स्मरण लौट जाता, फिर 5 मिनट पर स्थिति आ जाती है स्मरण भूल जाता, माना 5 मिनट के बाद तुरंत, जब स्मरण 1 मिनट तक आ जाता है, हमने 1 मिनट तक का देखा है कि 1 मिनट के बाद फिर वापस याद आ जाती, वो बहुत अद्भुत है, वो बहुत आनंदपूर्ण है कि एक स्थिति जो 1 मिनट भूले हुए की स्थिति है वो आनंदपूर्ण धुंध की स्थिति रहती है, आनंदपूर्ण है, और आनंद के साथ साथ इस चीज का बोध है कि मैं आनंदित हूं, यह सजगता की स्थिति है, असजगता में सजग होने की स्थिति है। और यह समय की मात्रा जितनी कम होती जाएगी उतनी सघनता से इसको हम इस असजगता को महसूस करते, जितनी यह गैप बहुत बड़ा होगा तो उतना हम समझ इसको नहीं सकते। तो साधना के संदर्भ में साक्षी दृष्टा के केंद्र पर यदि हम सजग हैं तो सब कुछ सहज है, और यदि असजग है तो इसके प्रति हमें तीव्र पुरुषार्थ की जरूरत है। अब प्रश्न उठता है कि यह सजगता अंतर जगत में, जो हमारा बाहर का जगत है, युद्ध जो बाहर होते हैं उसमें विजय होती है पराजय होती है, लेकिन यह युद्ध हमारे अंतर मन का, अंतर जगत का युद्ध है। इस युद्ध में लड़ाई है, लेकिन सावधानी ये रखनी है कि लड़ाई तो हो रही है लेकिन योद्धा के पद पर नहीं बैठना है, योद्धा के सीट पर नहीं बैठना है। उस युद्ध में तो योद्धा का होना जरूरी है, लेकिन यहां युद्ध का होना जरूरी है और युद्ध के प्रति जागृत होने की जरूरत है, योद्धा होने की जरूरत नहीं है, साक्षी होने की जरूरत है। योद्धा यानी कर्ता, कर्ता नहीं, भोक्ता नहीं, कर्मयोगी साक्षी की स्थिति, यह है दृष्टा की, साक्षी दृष्टा की स्थिति। परंतु हमारा जीवन अंदर संघर्ष और द्वंद में फंसा रहता है। क्या है संघर्ष और द्वंद, क्या है? हम ही अपने को दो हिस्सों में बांट लेते हैं और युद्ध करते हैं। हम ही क्रोध कर रहे हैं, क्रोध करने वाले भी हम ही हैं और पश्चाताप करने वाले भी हम ही हैं। पश्चाताप के साथ भी हम ही लड़ाई कर रहे हैं और क्रोध के साथ भी हम ही लड़ाई कर रहे हैं। तो अंतर द्वंद में हमारी आंतरिक शक्तियां फंस जाती है और हम ही दोनों तरफ से लड़ रहे होते हैं, और दोनों तरफ से लड़ रहे हैं तो किसकी विजय होगी और किसकी पराजय होगी, और हम थक जाते हैं। कभी भी हमको लगता है कि यह मार्ग विजय का मार्ग है, लेकिन यह विजय का भासित मार्ग है। लगता है कि विजय मिलेगी, लेकिन विजय मिलते मिलते फिर पराजय की स्थिति आती है। अभी अभी क्रोध और क्रोध से लड़ रहे हैं और उस पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, धीरे 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 वो छीन होता जा रहा है और पश्चाताप की स्थिति आ गई है अभी, और सब कुछ धीरे धीरे रिपेंट और धीरे धीरे शांत हो रहा है, लेकिन स्थिति पेंडुलम की तरह डोलती रहती है। पश्चाताप की तरफ जा करके फिर क्रोध की तरफ आएगी, आती है। जीवन में हम सभी को अनुभव है इस बात का, हम महसूस करते हैं। वास्तव में महसूसता इस संदर्भ में नहीं है, महसूसता का संदर्भ अलग है, लेकिन हम इधर या तो इधर पेंडुलम की तरह डोलते रहते हैं और इसमें हमारी शक्ति नष्ट होती है। इसको एक उदाहरण से समझे। आपने देखा कि छोटा बच्चा होता है, वो गिर गया और चिल्लाने लगा, माँ बाप कहते अरे तुमको धरती ने गिरा दिया, इस जगह ने गिरा दिया, इसकी हम पिटाई करते हैं, और उसको एक चाटा मारते, बच्चा खुश हो जाता है पिटाई हुई। अब यहाँ एक चीज देखने जैसी है, यदि कई बार जोर से भी पीट देते, जोर से पीट देते तो हाथ में खुद चोट लग जाता। तो यहाँ स्थिति क्या है, हम ही दोनों तरफ से मार भी रहे हैं और मार भी खा रहे हैं, मार भी रहे हैं और मार भी खा रहे हैं। इसका और सघन उदाहरण देखो, कई बार आदमी क्रोध में आग बबूला हो जाता है और दोनों हाथों से, क्या स्थिति है? एक स्थिति हो कि हम सजा दे रहे हैं, एक हाथ से गाल को सजा दे रहे हैं, जैसे बाहर दूसरे को देते हैं ऐसे। दूसरी स्थिति क्या है, सजा पा रहे हैं, दे रहे हैं और पा रहे हैं, हम ही दोनों तरफ से सक्रिय। तो ये युद्ध भासित हो रहा है, युद्ध है, और इस युद्ध में कभी भी हमको विजय नहीं मिलेंगी। इस युद्ध में विजय मिलते मिलते पराजय की स्थिति हो जाती है, पराजय मिलते मिलते विजय की। इस बात के प्रति सजगता की जरूरत है, नहीं तो, और बहुत बार इस युद्ध में हम हार जाते हैं तो हतोत्साहित हो जाते हैं, उस पुरुषार्थ को छोड़ देते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, ये स्थिति भी हमारी बनती है। इसका अर्थ है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं वो मार्ग, वो दिशा, वो प्रयास, वो पुरुषार्थ, वो विधि सही है कि नहीं है? क्रोध पर विजय प्राप्त करने की यह विधि सही है क्या, यह एक प्रश्न उठता है। बाबा भी कहते एक बहुत अच्छी बात, मैं एक मिनट में कोट करता हूं, साक्षी दृष्टा की स्थिति से आनंद की प्राप्ति और भय की मुक्ति। बाबा कहते हम सभी देखो, बाप को भी जान लिया, पा लिया, वर्षा भी पा लिया, बाप को भी जान लिया, वर्षा भी पा लिया, ब्राह्मण परिवार के अंदर ब्राह्मण भी स्वयं को मान लिया, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का टाइटल भी लग गया, ईश्वरीय सेवार्थ निमित्त बन गए, सहज योगी भी कहलाया, प्राप्ति के अनुभव भी करने लगे, ईश्वरीय नशा प्राप्ति का नशा भी चढ़ने लगा, प्रारब्ध का निशानी भी दिखाई देने लगा। लेकिन आगे क्या हुआ? ये सब है और आगे क्या हुआ? माया के चैलेंज को सफलतापूर्वक सामना नहीं कर पाया। यदि चैलेंज में हम सफल हो जाते, अभी सुन रहे थे, तब हम एक नए व्यक्ति का हमारे अंदर निर्माण होता है। लेकिन यदि चैलेंज में सफल नहीं हुए, लर्निंग में हम असफल हो गए, एस्केप कर गए, तो हमारी व्यवस्था जो चैलेंज की है वो गलत हो गई। और जब चैलेंज सफलतापूर्वक सामना नहीं कर पाते तो माया के वैरायटी रूपों को परख नहीं पाते हैं, इसीलिए कोई माया को बलवान देख दिल शिकस्त हो जाते हैं। क्या हम विजयी बनेंगे, एक प्रश्न उठने लगता है। कोई सामना करते करते कब हार कब जीत का अनुभव करते थक जाते, अर्थात तो थक कर जहाँ है जैसे हैं वहाँ वहीं रुक जाते और आगे बढ़ने की सोचने की हिम्मत भी नहीं करते। और फिर आगे हम अल्पकाल के हिम्मत के लिए अपने साथी पंडे को ढूंढ लेते और उसे अल्पकाल का सहारा प्राप्त कर लेते, लेकिन वो अल्पकाल का तिनके का सहारा है और वह बदलने वाला सहारा है, इसलिए आधार हिला फिर स्थिति हिल जाती। तो इस तरह से असफलता हो जाती है। एक अंतर्दृष्टि साक्षी दृष्टा के संदर्भ में साधना में देखें, एक क्रोध के संदर्भ में, खाली सभी विकार और बुराइयों के संदर्भ में, कि क्या यह विधि सही है संघर्ष करने की, क्रोध पर विजय प्राप्त करने की? नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं यह विधि सही नहीं है। इन दोनों ही अंतर्द्वंद की स्थितियों में हमें एक तीसरे केंद्र को देखना पड़ेगा और वह तीसरा केंद्र बिंदु है साक्षी का। यदि हम इस साक्षी के केंद्र बिंदु पर स्थित हो जाएं, तो हम इन दोनों ही स्थितियों को देखने वाले दृष्टा हो जाएंगे। बाबा कहते ड्रामा के हर एक दृश्य को देख करके उसमें कल्याण समाया हुआ है, ऐसा समझ करके देखने वाले दृष्टापन की स्थिति में रहो। बाबा ने कहा भले ही स्थूल में अकल्याण दिखाई दे रहा है, नुकसान हो रहा है, फिर भी उस बेहद के कल्याण की दृष्टि में दृष्टा बन करके देखते रहो, प्रभावित नहीं हो, स्थिर रहो, साक्षी की सीट पर बैठे रहो। साक्षी का अर्थ है देखने वाला, कर्ता नहीं, क्योंकि कर्ता होते हम निर्णायक हो जाते और भोक्ता की स्थिति में चले जाते। तो कर्ता नहीं, दृष्टा की स्थिति में यदि हम रहते हैं, क्योंकि आप देखो सब कुछ अपने आप हो रहा है। वास्तव में इस सृष्टि में जीवन की सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं अपने आप हो रही, हमको लगता है कि हम कर रहे हैं। हमारी जन्म अपने आप हो जाती है, पूछ के जन्म लिया है कोई, अपने आप जन्म हो जाता, मृत्यु अपने आप हो जाती। जीवन के इस दो महत्वपूर्ण केंद्रों के बीच में आपका जीवन कैसे कहते कि ये मेरा जीवन है, मैंने ये किया मैंने वो किया? जीवन की समस्त महत्वपूर्ण क्रियाएं अपने आप चल रही है, श्वास अपने आप चल रहा है, हार्ट बीटिंग अपने आप चल रही है, सारी स्वसंचालित क्रियाएं अपने आप चल रही है, सूरज अपने आप निकल रहा है, आपसे पूछ के निकल रहा है, रोशनी के बिना तो जीवन नहीं चलती। जीवन 48 नियमों के अधीन चल रहा है, जो सब बाहर से हो रहा है, और जहां भी हमारे किए हो रहा है, एक दूसरी स्थिति हमारे करने की, वहां हमें कर्मयोगी की स्थिति में बाबा ने कहा रहने के लिए, यानी करण करावन हार की स्थिति में, यानी दृष्टा की स्थिति ही वो स्थिति, देखने वाले की स्थिति, हो रहा है मुझसे, मैं कहीं केंद्र पर स्थित हूं, करण करावन हार। तो यह साक्षी दृष्टा के केंद्र पर यदि आप स्थित हैं, तो आप इन दोनों ही पेंडुलम के स्थिति से पार जा सकते, दोनों ही हो रहा है और दोनों ही दिखाई दे रहा है हमको, पश्चाताप भी दिखाई दे रहा है, क्रोध भी दिखाई दे रहा है। यदि क्रोध जिस समय आ रहा है उसी समय पश्चाताप आ जाए तो ये दोनों खत्म हो जाएगा एक सेकंड में। क्रोध और पश्चाताप दोनों एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन ये दोनों एक साथ आता नहीं है। तो हम तो इसको देख सकते हैं कि क्रोध आए तभी भी हम जागे हैं, पश्चाताप आ रहा है तभी भी जागे हैं, इसका अर्थ है कि दोनों कभी भी आए या दोनों एक साथ आए, हम जागे ही हुए हैं, हम जागृत हैं। यह जो असजगता के प्रति जागृति है, इस बात को हमने थोड़ा सा समझा, प्रयोग करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तो ही हम समझेंगे, तो ही हम साक्षी दृष्टा की सीट पर अचल अडोल बैठ सकते हैं। और साक्षी दृष्टा की स्थिति पर बैठने के लिए हमें तटस्थ रहना जरूरी है। तटस्थता अर्थात किसी भी पक्षपातपूर्ण स्थिति से मुक्त। यदि आप मुझे सुन रहे हैं और आप किसी तुलना और विश्लेषण इत्यादि में लगे हुए हैं और अपने अंतर जगत में आप किसी बातों के पूर्वाग्रह में फंस गए हैं, तो आप हमारी बात को नहीं सुन सकते। यदि वाद विवाद चल रहा है, विवाद चल रहा है, एक हिंदू बैठा है, एक मुसलमान बैठा है, एक सिख बैठा है, एक ईसाई बैठा है, और एक ईसाई बोल रहा है, हिंदू ठीक से नहीं सुन रहा है, मुसलमान ठीक से नहीं सुन रहा है, क्योंकि वे सभी सभी अपने सिद्धांतों और पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं। सुनने की क्रिया नहीं है, वो पक्षपातपूर्ण है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है। हम लोग भी जब किसी मीटिंग में बैठते हैं, किसी बातों को सुनने के लिए बैठते हैं, तो तत्क्षण पूर्वाग्रह और पक्षपातपूर्ण हो जाते हैं। नहीं तो राइट लिसनर की स्थिति तो बहुत वंडरफुल है, यदि हम सही ढंग से चीजों को सुनते हैं तो तत्क्षण समझ जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं। दूसरी स्थिति है करने की, पहली स्थिति सुनने की ही है, लेकिन हम सही ढंग से सुन नहीं पाते, सुनते ही तुलना और विश्लेषण में फंस जाते हैं स्मृति में। तो सही ढंग से सुने, पक्षपातपूर्ण नहीं हो, नहीं तो वाद विवाद क्यों उठ जाता है, संवाद विवाद में बदल जाता है, तू मैं में बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? इसी कारण से बदल जाता है कि हम पक्षपातपूर्ण हो जाते हैं। तो यदि अपने जीवन के संदर्भ में साक्षी की सीट पर बैठते हैं तो तटस्थ होना बहुत जरूरी है। यदि तटस्थ हैं आप तो साक्षी दृष्टा की सीट पर बैठ सकते, नहीं तो नहीं बैठ सकते। और स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, स्वतंत्र होकर के ही यदि हम बैठे हैं साक्षी के सीट पर तो बैठ सकते, यदि स्वतंत्रता नहीं है तो, क्योंकि हम किसी न किसी आदेश आज्ञा के अधीन होकर के प्रेशर में किसी बात को मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो आप स्वतंत्र नहीं है। हम निश्चित करें कि हम सुनेंगे सबकी बात, जानेंगे सबकी बात, लेकिन वे जो हमारे अनुभव में उतरती है, वो जो बाबा की कसौटियों पर उतरती है, उस बात को ही हम स्वीकार करेंगे, अन्यथा उससे पहले हम पूर्णतः अंतर जगत में स्वतंत्र हैं। और यह स्वतंत्र ही साक्षी हो सकता है। यदि स्वतंत्रता खो दी आपने तो आप साक्षी के सीट पर नहीं बैठ पाएंगे, हट जाएंगे। तो इस पर थोड़ा सा प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, प्रयोग करें कि साक्षी दृष्टा की स्थिति में कैसे हम रहेंगे, अंदर चल रहे विचारों वृत्तियों का, क्योंकि बाहर की तो कोई बात है नहीं। दूसरे के प्रति साक्षी होना तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि दूसरा तो ऑब्जेक्ट है, हमारे चारों तरफ ऑब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट हूं, मुझसे वो चीजें अलग है। यहां सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो पहली बात कि हम अपने अंतर जगत में जब विचारों और भावों का निरीक्षण कर रहे हैं तो हम उसे सहयोग देना सबसे पहले बंद करें। सहयोग नहीं दे उसे, सहयोग देने का अर्थ है कि हम उसके साथ तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, तद्रूपता और एक रूपता की स्थिति हो जाती है उन विचारों और भावों के साथ। तो इन विचारों और भावों को हम तटस्थ होकर के, मौन निरीक्षक के पद पर आसीन होकर के असहयोग करें, असहयोग का आंदोलन चलाएं, तटस्थ रहें। क्योंकि सहयोग क्या है, तादात्म क्या है, मैत्री भाव है, हम विचारों के साथ मैत्री भाव कायम कर लेते हैं। तो देखें कि विचार चल रहे हैं और वो भिन्न हैं, वो हमारे से पृथक हैं, वे भिन्न हैं और मैं अलग हूं। तो जैसे ही भिन्न महसूस करने लगेंगे, पृथकता का भाव अंदर रखेंगे, तो धीरे धीरे आप देखेंगे असहयोग का आंदोलन आपका प्रारंभ हो गया है, सहयोग देना आपने बंद कर दिया है। दो ही स्थितियां हमारी है, हम जब देखते हैं तो कोई चीज जो हमें दिखाई देती है और एक जो हम देखते हैं, और देखने की दूसरी स्थिति है कोई चीज हमें, हम देखते हैं और कोई चीज है जो हमें दिखाई देती है, और दूसरी स्थिति हमें दिखाई नहीं देती है, हम देखने वाले हैं और चीजें दिखाई नहीं देती है। दो ही स्थितियां, यदि चीजें दिखाई देती है तो उसके साथ एक रूपता की अवस्था हो जाती है, यदि चीजें दिखाई नहीं दे तो हम एक रूपता से बचे। तो क्या करें कि हमारे बाहर चीजें दिखाई नहीं दे, और यदि बाहर, बाहर का जगत है एक और एक अंदर का जगत है, बाहर के जगत में यदि सब चीजें दिखाई दे रही और हमने आंखें बंद कर ली तो बाहर को दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन अंतर जगत में वो सब चीजें उतनी ही रंगीनता से प्रकट हो जाती है हमारे अंदर, तो दूसरा अंतर जगत हमारे सामने आ जाता है। लेकिन यदि अंतर जगत भी समाप्त हो जाए तो हमारी देखने की शक्ति तो विद्यमान है ना, देखने वाला तो वहां विद्यमान है। अभ्यास करेंगे तो पता चले जाए कि यदि अंदर का जगत भी समाप्त हो गया। तो देखने की जो शक्ति है वह किसे देखेगी? वह अनंत से परावर्तित होकर के देखने वाले पर ही लौट आएगी। यानी देखने वाला देखा गया। जय कृष्णमूर्ति, इस शब्द की बड़ी व्याख्या होती है अलग अलग ढंग से, लेकिन सही व्याख्या तो यह है, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, देखने वाला देखा गया। यानी आत्मा जो सबको देख रही थी उसने उसे देखा। और जहां आनंद है, जहां प्रेम है, जहां प्रकाश है, जहां नूर है, जहां तरंग है, मात्र वो जो देख रहा है अपने को, वह देख नहीं रहा है कि मैं प्रकाश स्वरूप हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं प्रकाश का विजुअलाइजेशन करता हूं, तो यही आत्मा की स्थिति है। आत्मा की स्थिति प्रकाश की भी है, आनंद की भी है, प्रेम की भी है, शांति की भी है। जिस भी अवस्था में आप स्थित हैं उस समय वह आत्मा की स्थिति होती है। तो पहली तो असजग नहीं बने हम, सजग बने। दूसरी स्थिति है सहयोग नहीं करें। तीसरी स्थिति है मन हमेशा ऑब्जेक्ट में उलझा रहता है, इसलिए किसी न किसी भांति सभी ऑब्जेक्ट को अंदर से हटा दे। ऑब्जेक्ट जितना भी रहेगा मन उतना प्रसन्न और मन उतना चंचल। यदि आपके पास 50 ऑब्जेक्ट है तो मन 50 की तरफ घूम रहा है। उदाहरण के लिए देखें, एक बच्चा है और 7 डब्बे हैं, 7 तो डब्बे पर कूद रहा है वो बच्चा। तो यही स्थिति है ऑब्जेक्ट के साथ जुड़े हुए मन की। अब 7 डब्बे को हटा दिए, एक ही डब्बा बचा और बच्चा एक ही डब्बे पर कूद रहा है। अब एकाग्रता की स्थिति, चंचलता की स्थिति नहीं है, लेकिन यह भी ऑब्जेक्ट में उलझी हुई स्थिति। और यदि बच्चा डब्बे पर से ही उतर गया, अब वो आधारहीन हो गया, आधारहीन हो गया, आधारहीनता आ गई तो निराधार हो गया। निराधार होते ही स्वाधार हो जाता है। निराधार हुआ डब्बे से, लेकिन अब अपने पर आधारित है, अपने पैर पर तो आधारित है। तो निराबलंब करें, सभी अवलंब को हटाएं तो स्वावलंबी हो जाएंगे। तो ऐसे अपने को सभी ऑब्जेक्ट से धीरे धीरे हटाते जाएं, अपने ऑब्जेक्ट पर, अपने स्व पर, सब्जेक्ट पर आ जाएं। तो थोड़े से ये प्रयोग करेंगे तो धीरे धीरे हम साक्षी दृष्टा की सीट पर बैठ जाएंगे। और उस अवस्था में जब सभी ऑब्जेक्ट समाप्त हो जाते हैं, जब सभी तरह के उन ऑब्जेक्टों को सहयोग देना हम बंद कर देते हैं, तब उस एक हमारे अंदर जगत में सब कुछ एक खाली रोड की तरह सन्नाटे की स्थिति आ जाती है। उस शांत सजगता की स्थिति में, उस मौन तटस्थता की स्थिति में हमें अपने स्व का बोध होता है और हम साक्षी दृष्टा की सीट पर अपने को अनुभव करते हैं। फिर कभी मौका मिला तो अभ्यास करें। एक बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट है साक्षी अकर्मण्यता से। पहली बात तो इसमें इसमें एक सॉल्यूशन भासित होता है। जितनी भी भासित होता है, लगने लगता है, यही समस्या खड़ी है। हमें इस लगने लगने वाली स्थिति से मुक्त होना है। ये इस पर काम करना है बहुत हमको। हमें लगने लगता है बहुत बार, जो जो भासित है वो सत्य का बोध कराता है।
भासना, वो जो भासित है वो हम कैसे पता करें कि ये भास हो रहा है और ये सत्य नहीं है?
हाँ, भासित हो रहा है और भासित हो रहा है और ये सत्य नहीं है, ये तो तब पता चलेगा जब सत्य सत्य को हम पाएंगे, तो पता चलेगा कि वो भासित हो रहा था। भासित की स्थिति में तो नहीं पता चलता है कि ये भासित है, तब तो भ्रमपूर्ण स्थिति है। भ्रम से निकलने का अर्थ भ्रम को जानना नहीं है। भ्रम से निकलने का अर्थ है सत्य में स्थापित होना, जो सच्चाई है।
परंतु ये स्थिति हमको दिन भर रखनी है सजगता की, निरंतर सजगता, क्योंकि एक पल भी असजगता का आ गया, मूर्छा का आ गया, तो उसमें भास हो जाना ये बहुत ज्यादा संभावना है।
बिल्कुल बिल्कुल।
ऐसा क्या किया जाए कि सुबह से लेकर रात तक साक्षी का केंद्र निरंतर सक्रिय रहे? ऐसा कौन से स्थूल अभ्यास किया जाए जिसमें सजगता कायम रहे, सजगता पुष्ट होती रहे?
एक इसमें मैं एक मेरा अनुभव सुनाता हूँ। सबको लगता है कि हम निरंतर बने, बाबा कहते हैं निरंतर बने, लेकिन निरंतर से पहले चूंकि निरंतर में तो बहुत अंतर है, अभी बहुत बड़ा बड़ा अंतर है, तो अंतर को कम करें पहले, हम पहले इसका अभ्यास करें। क्या हुआ 85-86 में, तो जब बाबा ने कहा कि बच्चे जो इस वर्ष पुरुषार्थ करेगा उसका पुरुषार्थ 50 वर्षों में ऐड हो जाएगा, और दूसरी मुरली साथ ही चली बाबा की जिसमें साकार मुरली थी, जिसमें बाबा ने कहा कि यदि कोई 24 घंटा बाबा को याद कर ले तो उसी दिन कर्मातीत हो जाएगा। और पीछे हम लोगों का लंबा अभ्यास किचन में चलता था, सबका चलता था, किसका 6 घंटा, किसी का 8 घंटा, किसका 7 घंटा, तो इस तरह से अभ्यास हम लोगों ने बरसों 8 घंटे का किया। डेली चार्ट लिखते, डेली लिखते थे, और डेली चार्ट लिखने का अर्थ है कि हर एक घंटे हम चेक करते थे, ये जो सजगता की बात आ रही है, और हर एक घंटे इसका अर्थ है कि अभ्यास हम सारा दिन करते थे लेकिन घंटा 8 ही होता था, 6 ही होता था, 5 ही होता था, यानी सजगता की स्थिति 5 ही होती थी, 4 ही होती थी, मूर्छा से मुक्त हम 3, 4, 5, 6 इस क्रम में ही हम बढ़ते थे, और कोई भी उपाय नहीं है, भूलना और याद आना, भूलना और याद आना। तो इसका प्रैक्टिकल अभ्यास ये है कि आप, और फिर हमने, हम लोग ने ये लक्ष्य रखा कि यदि काश आकर्षित किया कि 24 घंटा काश, तो 9-10 तक हम पहुंचने लगे, 9-10 के बाद तो खिसकना बहुत मुश्किल, आधा घंटा खिसकने में एक एक महीना लग जाता था, 10 को 10.5 करने में, किसी भी भांति हम 13-14 तक, आप वो झूठ है सत्य है आप समझो, लेकिन हम 13-14 तक पहुंचे और उसके बाद रुक गई हमारी गाड़ी, उसके बाद नहीं पहुंची, आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि उस 13-14 में हमें एक दो चीजों का अनुभव हुआ कि संकल्प और स्वप्न में दुख की अविद्या हो गई थी, सपने में भी दुख भाषित नहीं होता था, जागे हो कि तो बात ही छोड़ दो आप, निरंतर आनंद की स्थिति। अब तो यह था कि हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं ना, और यही कारण बना कि वो 14 घंटा धीरे धीरे 2 घंटे पर आ गया, कि बिना पुरुषार्थ के हम आनंदित रहने लगे, हरदम आनंद की तरंगे बैठे, आनंद की तरंग, पुरुषार्थ करना बंद और उस सुख को भोगना शुरू कर दिया, भोग रहे हैं ना, आनंद को भोग रहे हैं, आनंद को बढ़ा नहीं रहे हैं। ये अभ्यास करना पड़ेगा कि सुख को, आपका सुख आज यदि सारे दिन में 2 घंटा हुआ है तो उसको बढ़ाएं आप, सुख को उसको भोगे नहीं, हम भोग करके बाबा कहते खाली खा जाते और खाली कर देते उसको भोग करके। तो आपको एक तो ध्यान रखना पड़ेगा कि आप आधा घंटा योग कर रहे हो और आनंद आने लगा है तो आप तत्क्षण संतुष्ट होकर के वहां से उठ जाते, उसी को थोड़ा घना करना है, यह थोड़ी मुश्किल है, यहां पर हमें असजग हो जाते हैं, हम संतुष्ट, संतुष्टता ना असजगता की स्थिति पैदा,
भोक्ता की भी स्थिति है,
भोक्ता की भी स्थिति है, संतुष्टता सजगता की अभाव है और भोक्ता की भी स्थिति है, गहरे में संतुष्ट हो गए हैं तो अब किसी चीज से संतुष्ट
निरंतर असंतुष्टता,
निरंतर असंतुष्टता,
डिवाइन डिस्कंटेंट, वो कोई उस तरह की असंतुष्टता नहीं है जो संसार वालों को होती है, कोई चीजें चाहिए, ये एक बेचैनी है हायर स्टेज के लिए,
ये बेचैनी है और पाने की, ये बेचैनी है बहुत अधिक पाने की, ये बेचैनी है हमें खजाना और भी बहुत ज्यादा है, मुझे चाहिए, और यह खजाना, यह सब चलना, यह दौड़ना, यह उड़ना, अंतर जगत में ठहरना है, उतनी तेजी से उड़ना, उतनी गहराई से ठहरने जैसा है, केंद्रित होने जैसा,
ये तो चलना। साक्षी फिर साधना है या परिणाम?
साक्षी स्थिति है और साक्षी प्रयास है, जब
परिणाम भी तो साक्षी है,
साधना है और परिणाम है, और परिणाम के बाद बड़ा अच्छा लगता है, प्रसन्नता की स्थिति आती है, और फिर हम च्युत हो जाते हैं, और फिर च्युत हो जाते हैं,
तो
और फिर साधना में आना पड़ता है और साधना के लिए फिर इस तरह की तमाम शर्तों पर 3 दिन से हमने चर्चा किया, तटस्था, मौन, पक्ष मुक्त, निरीक्षण, सब चीजों से मुक्त,
चॉइसलेस अवेयरनेस,
और ये बहुत जरूरी है, सचिन भाई क्लास कराते रहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस पर, और वैरायटी आप लोगों को क्लास मिलती है, आज हम इस चीज पर विराम लेते हैं,
फिर आपकी कभी मौका मिले जो बुक है एक मैं के रूप हजार उस पे हम चाहेंगे भविष्य में,
ओके ओके,
वो पूरी बुक कितने चैप्टर्स होंगे उसमें?
उसमें बहुत चैप्टर्स हैं,
फिर भी आप उसको कम से कम 10 भाग में उसको लेना है आपको,
ठीक है, बहुत बड़ा काम है करेंगे, और
देखो क्योंकि हमारे लोगों के पास किताब पढ़ने के लिए टाइम नहीं है,
नहीं नहीं बिल्कुल तो और किताब लिखने वाला शायद ज्यादा लिविंग होगा, किताब तो बोलता नहीं
किताब
है,
मुर्दा
लेकिन
होती
आप
है,
हमारे से प्रश्न कर सकते हैं कि आपने क्या लिखा है, ये
व्यक्ति जिंदा है।
फिर ये नहीं हुआ कि मैं कहीं से कुछ लिख दिया है क्या पढ़ के। कई लोग बोलते हैं कि भाई बैठा रहता है ना सारा दिन किचन में तो कुछ पढ़ता रहता है। एक भाई ने कहा कि वो इस किताब में से कुछ, उसको पता नहीं किताबों की कॉपीराइट्स बहुत भयंकर होती है, किस किताबों में से कुछ नहीं लिख करके कहीं डाल सकते, ऐसा नहीं हो सकता।
तो वो आप
हाँ बिल्कुल
मार्च में
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
सुशील भाई कंक्लूड करेंगे थोड़ा। नहीं आप करो, कल से हम एक नई भट्टी चालू करेंगे। जस्ट मिनट, इसको इंक्लूड कर दो। 21 दिन, 1 मार्च से 21 मार्च, 22 मार्च से 31 मार्च आप लेंगे।
10 दिन
लगातार मैं के रूप हजार, वो जो किताब है
आपने इतना उसमें है क्या? तो शायद मैं बोल सकूं 10 दिन एक ही विषय
क्योंकि उसमें जो हमने पूरी तो नहीं पढ़ी पर जो कुछ पढ़ा था उसमें काफी गहराई है
जी।
बहुत डेप्थ है, जो मैं का जो स्वरूप है चेतना का, उसमें भी बहुत सारी साक्षी की ही बातें हैं। तो वो आप फिर 22 से लेके तो 31 तक, कल से हम चालू करेंगे एक नई भट्टी। कौन सी करें? कल की जो भट्टी है वो 1 मार्च से लेके 21 मार्च, 21 डेज ब्रह्मचर्य पर भट्टी होगी। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, इसका संबंध केवल काम विकार से नहीं है, और काम विकार के बारे में हमने जो समझा है उसमें बहुत सी कमियां हैं। एक तरफ भोक्ता भाव, एक तरफ उससे भाग जाना, यही दो मार्ग अभी तक लोगों ने किए हैं। एक तो भोगा है उसको, या तो सन्यासी बनकर उससे भाग गए। पर एक दूसरा मार्ग भी है साक्षी का, जो साक्षी होते होते उससे पार चले जाए, और वो केवल किसी एक विकार की बात नहीं है, सारे विकारों का कि निर्जला हो जाए, निर्मूलन, वो अभ्यास है। तो कल से हम एक नई सीरीज चालू करेंगे, जागे ब्रह्मचर्य अंतर प्रज्ञा। ये एक प्रज्ञा जाग जाए, एक बोध जाग जाए अंदर से, और वो जैसे ही बोध जागेगा चेतना में, ब्रह्मचर्य प्रयास पुरुषार्थ नहीं रहेगा, आनंद की अवस्था होगी। तो कैसे उस निरंतर आनंद की अवस्था में रहा जाए, और इस 21 दिन में जैसे हमने पहली जो सेकंड भट्टी हुई थी उसमें ढेर सारे प्रयोग देखे थे, इस भट्टी में भी हर दिन के लिए दो दो तीन तीन चार चार अलग अलग प्रयोग जो दिनचर्या में करने हैं उसका अभ्यास करेंगे। क्योंकि प्यूरिटी फर्स्ट सब्जेक्ट है, प्यूरिटी से बड़ा और कोई सब्जेक्ट नहीं है, और प्यूरिटी की आधारशिला ब्रह्मचर्य है। इसलिए ब्रह्मचर्य को गहराई से समझना, बाबा ने जो कहा है वो द्वापर से अब तक जितने संसार में महान आत्माएं, ऋषि मुनि तपस्वी योगी, केवल भारत के नहीं ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फिलॉसफी मिलाकर सबका सार क्या है, जगदीश भाई जी ने अपनी किताबों में क्या लिखा है, वो सारी ब्रह्मचर्य की जितनी सम टोटल ऑफ ऑल द थिंग्स, उस सब की चर्चा कल से हम आरंभ करेंगे। अच्छा, ओम शांति। सुशील भाई थोड़ा कंक्लूड कर दो, ये 3 दिन का साक्षी की खोज।
ओम शांति। हमारे मधुबन के पुरातन अशोक भाई मधुबन के छुपे हुए हीरे हैं, जो कईयों ने इतनी गहरी बातें अभी तक सुनी भी नहीं होंगी साक्षी की अवस्था के बारे में। और मैं के रूप हज़ार एक सोच के ऊपर किताब है, बहुत गहरी गहरी बातें हैं, लेकिन उसकी गहराई में जाने के लिए हमको जो रास्ता मार्गदर्शन मिलता है उसके लिए अशोक भाई जी ने जो हमको 3 दिन दिए बहुत अमूल्य रहे। बहुत गहराई में जाके साक्षी की अवस्था कैसे हमारी खुद की खुद से ही लड़ाई होती है, कैसे हम खुद के विचारों में फंस जाते हैं या विचार हमको पकड़ के रखते हैं, तो इससे हमने बहुत कुछ सीखा। तो 3 दिन के क्लासें आपको YouTube के ऊपर भी मिल जाएंगी, तो जिसने नहीं सुनी तो फिर से सुनी, उसकी गहराई में उसको उसके मर्म तक गहराई तक उसको स्पर्श करने के लिए, ताकि वो हमारी चेतना में बैठ जाए, हम भी निरंतर उससे जग होकर साक्षी अवस्था का आनंद ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी का 3 दिन, और फिर से अब 9 दिन का जो 10 दिन का पहले से टारगेट दे दिया है, हाँ, तो उसके लिए भी बहुत से हम पहले से अपनी तैयारी करके रखेंगे कि इस हमारे मानसिक धरातल पर वो बीज अंकुरित हो जाए फिर से। और जो किताब एक मैं के रूप हजार वो मिल जाती है लिटरेचर में, तो लिटरेचर में है या फिर कहाँ पर है?
वहाँ नीचे म्यूजियम में है, नीचे
नीचे म्यूजियम में, नीचे शांतिमन में वो म्यूजियम है, तो वहाँ मिल सकती है वो मैं के रूप हजार।
मैं 10 किताबें रख दूंगा जिसको भी उठा उठा के ले जाए पड़े।
तो फायदा लीजिए सब भी, ओम शांति।
मौका मिला, हमको लग रहा है कि हम जैसे बाहर भट्टी कराने जाते हैं ना तो इतने लोग बैठे रहते हैं, तो यहाँ भी सचिन भाई ने हमें एक सुअवसर दिया अभिव्यक्ति का, तो हम यहाँ पर अच्छा लगा हमें। और आपके साथ नहीं, हम अपने साथ भी बिजी रहते, क्योंकि जब आपको कुछ सुनाना तो उस क्रम में हमें भी तो कुछ ध्यान देना पड़ता है। निश्चित जगदीश भाई हमेशा बोलते थे बिना तैयारी के नहीं जाना, वो हमेशा, क्योंकि किसी एक ही विषय पर बात होनी चाहिए, इधर उधर 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 ये नहीं होनी चाहिए, ताकि हम एकाग्र हो सके, सुन सके। थैंक यू, धन्यवाद सभी को।